चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम और मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चीन के अंतिम सम्राट की आत्मकथा। तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, तो शुरू करते हैं। अभी आप सुन रहे हैं आठवां अध्याय, भय से मुक्ति और गुनाह का एहसास के तहत उत्तर पूर्वी जनता के दुख दर्द और घृणा कड़ी। पिछली बार जो हमने आपको कड़ी सुनाई थी, उत्तर पूर्वी जनता से छीना गया अनाज या तो फौज के इस्तेमाल के लिए रखा जाता था या जापान भेज दिया जाता था। जापान भेजे जाने वाले अनाज की मात्रा बढ़ते बढ़ते 1944 में 30 लाख टन तक जा पहुंची और मांचुकुओ युग के आखिरी 6 वर्षों में कुल 1,11,00,000 टन अनाज बाहर भेजा गया। अनाज, सूती कपड़ा, धातुएं और रोजमर्रा की जरूरत की दूसरी चीजों पर कंट्रोल के कानून के फलस्वरूप लोगों ने पाया कि वे आर्थिक अपराधी बनाए जा रहे हैं। मसलन सामान्य लोगों को चावल खाने की सख्त मनाही थी और अगर उनकी उल्टी में भी चावल के अवशेष मिल जाते तो उन्हें आर्थिक अपराधी के रूप में दंड मिल सकता था। अकेले 1944-45 में 317,100 लोगों को आर्थिक अपराधों के लिए दंडित किया गया था। जिस समय उनका अनाज उनसे छीना जा रहा था, उसी समय उत्तर पूर्व के किसानों के हाथ से उनकी जमीन भी निकलती जा रही थी। मांचुकुओं के अंतिम 2 वर्षों में 390,000 जापानी अप्रवासियों को उत्तर पूर्व में लाया जा चुका था और उन्हें देने के लिए उत्तर पूर्व की जनता की 3,65,00,000 हेक्टेयर भूमि कठपुतली सरकार ने छीन ली। जापानियों ने उत्तर पूर्व के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने और उसे अपना आर्थिक आधार क्षेत्र बनाने के लिए कठपुतली सरकार के जरिए अनेक उपायों से उत्तर पूर्व की जनता को अपना गुलाम बनाया। 1938 में जब से मेरे नाम से श्रम नियंत्रण कानून लागू किया गया, उसके बाद हर साल 25 लाख आदमियों को बेगार करनी पड़ी। लंबी दीवार के दक्षिण में जबरन भर्ती किए गए मजदूर इससे अलग थे। उनमें से अधिकांश लोग खनन और सैन्य निर्माण कार्य में लगाए गए और ऐसे भयानक हालात में उन्हें काम करना पड़ा कि असंख्य लोगों ने दम तोड़ दिया। 1944 में ल्याओयांग नगर के बाढ़ नियंत्रण प्रकल्प में लगे 2,000 नौजवानों में से 170 को तिल तिल कर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। किसान, साधारण मजदूर, क्लर्क, विद्यार्थी और नौजवान जो फौज के लिए चिकित्सा परीक्षण में पास न हो पाते, उन सबको इस बेगार में हिस्सा लेना पड़ता था, जिसे सरकारी भाषा में स्वैच्छिक श्रम कहा जाता था। सबसे अधिक दुख जिन लोगों को उठाने पड़े वे थे सुधार गृहों के बंदी। मांचुकुओ युग के अंतिम दिनों में जापानी शासन की पाश्विकता पागलपन की हदें छूने लगी थी। 1943 में श्रम शक्ति की कमी पूरी करने और जनता के बढ़ते हुए प्रतिरोध को रोकने की गरज से विचार सुधार कानून और सुरक्षा एवं सुधार कानून लागू किए गए और सुधार गृहों के नाम पर समूचे उत्तर पूर्व में यातना शिविर बना दिए गए। गरीब हो चुके लोगों या असंतुष्टों को आवारगी या कुत्सित विचारों के आरोप में इन संस्थानों में ठूंस दिया जाता था और उनसे कड़ी मशक्कत कराई जाती थी। कभी कभी अधिकारी राहगीरों को रोक लेते और उनसे कुछ पूछने की जहमत उठाए बगैर ही आवारा करार दे देते और फिर किसी सुधार गृह में डाल देते, जहां से वे कभी भी बाहर नहीं निकल सकते थे। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन के अंतिम सम्राट फू यी की आत्मकथा का 8वां अध्याय भय से मुक्ति और गुनाह का एहसास के तहत उत्तर पूर्वी जनता के दुख दर्द और घृणा कड़ी। मांचुको सत्ता के ध्वंस तक जीवित बचे हुए लोग अब नफरत और हिकारत से तिलमिलाते हुए जन सरकार को बता रहे थे कि कठपुतली सरकार ने उनके साथ क्या क्या किया। होकांग नगर का एक किसान 1944 में गिरफ्तार होकर मांचुको विरोधी और जापान विरोधी हरकतों के आरोप में पुलिस मुख्यालय ले जाया गया था। उसके साथ वहां 17 और लोग थे और भयानक पिटाई के बाद उन्हें होकांग सुधार गृह में डाल दिया गया, जहां उनसे तुंगशान खदानों में कोयला खोदने का काम कराया गया। उन्हें रोज 12 घंटे काम करना पड़ता था। हर बार खाने में बाजरे की एक छोटी सी बाटी दी जाती थी। पहनने या ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े नहीं थे और उन्हें लगातार बर्बरता के साथ पीटा जाता था। मेरी मां ने सुना कि मैं उस सुधार गृह में हूं और जहां मैं काम करता था वहां नुकीले तारों की बाड़ में से मुझे देखने के लिए आ पहुंची। पुलिस ने उसे देखा तो उसके बाल पकड़कर खींच लिया और तब तक उस पर लातें बरसाते रहे जब तक कि वो बेहोश होकर जमीन से उठने में असमर्थ न हो गई। बाद में उन्होंने फावड़ों से मेरी पिटाई की जिससे मेरे शरीर पर घाव हो गए और 7 दिनों तक मैं बेहोश पड़ा रहा। एक बार जब हमें खाने के साथ कोई सब्जी नहीं दी जा रही थी, सुंग खाए थुंग नाम का एक साथी कैदी मेरे कुछ पैसों से एक राहगीर से प्याज खरीद लाया। गद्दार सेक्शन हेड वांग ने उसे देख लिया और हम दोनों को बुलाकर उसने मुझसे 5 युआन छीन लिए और मुझे इतना पिटवाया कि मेरे मुंह और नाक से खून बहने लगा। फिर उसने मुझे एक बोरी में घुस जाने को कहा और मेरे मना करने पर सिर पर प्रहार किया और जब मैं बोरी में भर दिया गया तो उसे उठाकर उन्होंने 3 बार जमीन पर जोर जोर से पटका, जिसके फलस्वरूप मैं बेहोश हो गया। वहां रोज लोग मरते रहते थे और हर 3rd-4th दिन 7 या 8 लाशें उठाकर बाहर ले जाई जाती थीं। मेरे साथ पकड़े गए 17 लोगों में से 9 की वही मौत हो गई। मुझे तपेदिक हो गई और अभी भी मैं कामकाज के लायक नहीं हूं। मेरी मां पागल हो गई और मेरी 3 बहनों को, जिनमें से सबसे बड़ी 11 साल की थी, रोज भीख मांगने जाना पड़ता था। मांचुको की सेना, पुलिस, न्यायालयों और कारागारों ने उत्तर पूर्व की जनता पर जो असंख्य बर्बर अत्याचार किए थे उनकी गिनती करना असंभव है। 61 वर्ष के किसान वांग युंग होंग को जापान विरोधी संशयकारी सेना को खत भेजने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और उसने एक सामूहिक हत्याकांड अपनी आंखों से देखा था। चांद्र चीनी पंचांग के अनुसार 2 महीने के 26वें दिन कठपुतली पुलिस 30 से अधिक कैदियों को ले गई और चाओयुआन के पश्चिमी गेट के बाहर एक गड्ढा खोदने को कहा। रात हुई तो हम जेल में वापस आ गए। 27 तारीख को एक दल बनाकर वांग यामिन, काओ शुसान, लियू छंगफा और मुझे और दूसरे दल में अन्य 20 लोगों को वे पश्चिमी गेट के बाहर ले गए, जहां उन 20 लोगों को गोली मार दी गई। फिर वे 22 लोगों का एक दूसरा जत्था लेकर आए और उन्हें भी गोलियों से मार डाला। गोली मारकर पुलिस ने उनके शरीरों पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। उनमें से एक आदमी मरा नहीं था और आग लगने पर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। जब सारी लाशें जल चुकी, उन्होंने हम चारों से कहा कि उन 42 लोगों को दफन कर दें। चाओ युआन के गेट के बाहर वो कब्र आज भी मौजूद है और खोजने पर मुझे वो जगह मिल गई। मुख्य कार्यकारी और सम्राट खांग ते के रूप में मैंने जिस राजसी आचरण वाले स्वर्ग पर शासन किया था वो इस धरती का नरक था। ये सारे अमानुषिक अत्याचार मेरे नाम पर किए गए थे। तब क्या आश्चर्य कि मांचुको सत्ता के सारे मजलूम अपने बयानों के अंत में इस तरह के जुमले लिख रहे थे। मैं मांग करता हूं कि जन सरकार हमारा बदला ले। हम चाहते हैं कि जापानी और चीनी गद्दार हमारे खून का कर्ज अदा करें, हमारे कत्ल किए गए रिश्तेदारों का बदला लो, जापानियों और गद्दारों को सजा दो। तो श्रोता मित्रों, चीन के अंतिम सम्राट फू यी की आत्मकथा का 8वां अध्याय उत्तर पूर्वी जनता के दुख दर्द और घृणा कड़ी यहीं समाप्त होती है। अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें, अगली बार हम फिर एक नई कड़ी के साथ आपसे मिलने आएंगे। नमस्कार।